نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة البقرة آيات نمبر 49 سے 59 تک کریں گے. دیکھتے ہیں اب تفسیر. کہانیاں سننے کا شوق ہے آپ لوگوں کو؟ کہانی کا تو سب کو بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو آج ایک کہانی سنتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری کہانیاں آئی ہیں، لیکن قرآن پاک کی کہانیاں ان کہانیوں سے الگ ہیں جو آپ یہ ڈراموں میں، اس میں، فلموں میں، افسانوں میں پڑھتے ہیں. اس سے بہت فرق ہے. وہ کیسی ہوتی ہیں؟ وہ تو جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. جھوٹ جھوٹ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے، پھر بھی دیکھ دیکھ کے روتے رہتے ہیں. تو یہ قرآن کی کہانیاں ایسی نہیں ہیں، یہ سچی کہانیاں. ایسا ہی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہانیاں بتا کے ہمیں اس لیے نہیں بتائیں کہ ہم انٹرٹین ہوں، اس لیے بتائیں کہ ان سے ہم سبق لیں. آپ کو پتہ ہے ہم چھوٹے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں کیوں؟ اس کے بعد بعض دفعہ، پہلے کی بات ہے، اب تو شاید نہیں ایسا ہوتا ہوگا، کہ اینڈ میں لکھا بھی ہوتا ہے مورل، مورل آف دا اسٹوری، کہ کہانی سے کیا سبق ملا آپ کو، لیسن کیا ملا آپ کو. تو یہاں پہ جتنے بھی قصے آئے، کہانیاں آئیں، ان کے اندر سے لیسن ہمیں خود نکالنے ہیں اپنے لیے. ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی نا عبث نہیں ہے، یعنی بیکار نہیں ہے کہ ایسے ہی بس کہانیاں سناتے گئیں. کیوں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام فضول نہیں کرتا. تو جو یہاں پہ بھی کہانیاں، ان میں ہمارے لیے بہت بینیفٹس ہیں، بہت سارے سبق ہیں. اگر ہم سبق لینا چاہیں، ویسے تو پڑھنے کو یہ آیتیں کوئی بھی مشکل آیات نہیں ہیں جو آج کے سبق کی ہیں. آپ کسی بھی تفسیر میں سے ان کی ڈیٹیل آرام سے پڑھ کے اور سمجھ سکتے ہیں. یعنی اصل کام کیا ہے؟ انہی آیات سے اپنے لیے لینا کہ مجھے عمل کی بات کیا ملتی ہے، مجھے کیا سمجھایا جا رہا ہے. اصل میں تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا. جنہوں نے کر دیا اب وہ تو گزری باتیں ہو گئی، اب ان کا کیا کرنا؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، لو جی قرآن میں تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں بس بتائی. اور بے وقوفوں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ باتیں بتا کے اصل میں تمہیں سمجھایا گیا ہے. کوئی بات ہے جو انسان کو بتائی جاتی ہے کہ تم ایسا کرنا یا تم ایسا نہ کرنا. دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں ہمیں کیا سبق ملتے ہیں. کہانی شروع ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے. جی، یوسف علیہ السلام سے. آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اکثر لوگ ان کی کہانی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کنویں میں ڈالے گئے، پھر اس کے بعد بازار میں بکے، عزیز مصر کے پاس آئے، اس کے بعد جیل میں گئے اور وہاں سے پھر ان کو حکومت ملی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوا کہ قحط آیا تھا، اور انہوں نے قحط کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے اس پرابلم کو. اور جب قحط پڑا تو اس زمانے میں نا بہت دور دور تک قحط پڑ جاتے تھے. تو جب قحط پڑا تو آس پاس کے سارے علاقے اور یہ سب قحط کے اس میں آ گئے، اور یہ مصر میں تھے یوسف علیہ السلام. تو اب یہ بہت بڑے منسٹر تھے وہاں کے، انہوں نے تو اپنے جو ملک کی ساری چیزوں کا پہلے ہی انتظام کر لیا تھا، جیسے سورہ یوسف میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور جن لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں، تو ان کو پتہ ہے کتنی انہوں نے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سارا انتظام کیا ہوا تھا. تو ان کے ملک میں تو قحط کے وہ افیکٹس نہیں تھے کہ انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، مگر آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے تھے، اور کس طرح سے وہ ان سے آ کے کچھ نہ کچھ مانگتے تھے، لیتے تھے. ان کو سب طرف قحط تھا. تو ان کی فیملی کہاں رہ گئی تھی؟ پیلسٹائن میں. اب میں آج کی ٹرمز یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس وقت کی اگر ٹرمز یوز کروں گی تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کدھر کی بات کر رہے ہیں. अच्छा, अब ये इजिप्ट में आप मैप से भी जरा देखिएगा, तो वहां से इनके भाई लेने के लिए आए थे गल्ला, और उसके बाद फिर आपको ये स्टोरी पता होगी, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको फिर अपने पास ही रख लिया था। अच्छा, अब थोड़ी सी इस बात को सोचें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे किसी और मुल्क के हैं, लेकिन हम कहीं और मुल्क में आके बैठे हैं, ठीक है? तो इसी तरह वो बिलोंग नहीं करते थे इजिप्ट को, लेकिन वो इजिप्ट में समझ लें एज इमिग्रेंट थे, मगर एज इमिग्रेंट ऐसे नहीं थे कि कोई थर्ड रेटेड इमिग्रेंट हो, बल्कि चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत बड़े मिनिस्टर थे और उनका बहुत बड़ा एहसान था उस मुल्क के ऊपर, बहुत बड़े माने जाते थे वो वहां पे, क्योंकि उन्होंने ही उन लोगों को इस चीज की तदबीर बताई थी कि किस तरह से ये कहत से बचना, उन्होंने सारे इस चीज को कंट्रोल किया था। तो उनकी जाहिर है उनके पास वहां पे पावर थी, उन्होंने अपनी सारी जो फैमिली थी, अपने भाई थे जितने भी 11 भाई जो बाकी रह गए थे, अपने बाप और सबको अब सिटीजनशिप उनको मिल गई है इजिप्ट की, ठीक है? अब ये बातें मेरे ख्याल अब आसान होंगी समझनी, अगर तफसीर में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इस तरह नहीं समझ आए, जो आपको सिंपल वर्ड्स में आज की टर्मिनोलॉजीज में बता रही हूँ। तो अब उनको सिटीजनशिप मिल गई। अब मैंने आपको बताया था कि इसराइल किसका लकब था, याकूब अलैहिस्सलाम का, ठीक है? तो ये याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली है ना, उनके 12 बेटे थे, जिनमें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम है, बिन्यामीन है, और बाकी 10 भाई और उनके थे। तो ये सारे के सारे अब कहाँ सेटल हो गए, मिस्र में। तो बड़ा इनका स्टेटस था जाहिर है, बहुत कुछ उनको उन्होंने दिया वहां पे, क्योंकि ये किसके रिश्तेदार थे, बहुत बड़े मिनिस्टर के रिश्तेदार थे जिनका बड़ा एहसान था। अच्छा, अब वहां पे ये फले फूले, वहां पे ये रह रहे हैं, बड़ा अच्छा इनका दौर गुजर रहा है। लेकिन जैसे कि टाइम गुजरता जाता है, जाहिर है इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ी, और वहां पे फिर किसका कब्जा हो गया, फिरौन का। फिरौन एक आदमी का नाम नहीं है, एक्चुअली फिरौन जो है ये मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था, तो इसकी जो किबती कौम थी इन्होंने टेक ओवर कर लिया। फराइना, ऐसे फिरौन की जमा फराइना, यानी फराइना बहुत से आए हैं। फिरौन जो है वो इसका मीनिंग कहा जाता है कि ये, यानी सूरज देवता, उन्हें वो लोग कहते थे कि ये खुदा का अवतार है, खुदा ही जमीन पे आया हुआ इस शक्ल में, अल्लाह ताला माफ फरमाए, यानी इतने बिगड़े हुए इनके अकीदे थे। तो जैसे दूसरे मुल्कों में हम जैसे अपने यहाँ पे कहते हैं प्रेसिडेंट, या हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, या हम इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है ना जो हेड होता है उसके लिए, इसी तरह इजिप्ट के जो बादशाह थे उनके लिए था नाम क्या, फिरौन। तो हर एक को फिरौन ही कहते थे, ठीक है? अच्छा, अब क्या यहां से आगे स्टोरी क्या चलती है कि अब सेंचुरीज गुजरती गई, साल हर साल गुजरते चले गए, वो यहीं पे अब बस चुके हैं जो जिनको हम कहेंगे बनी इसराइल, ठीक है? क्योंकि इसराइल की औलाद, यानी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई हैं, उनके बच्चे, उनके आगे बच्चे, तो बहुत फैल गए। और आपको पता है जिस वक्त की कोई कौम बहुत फैल रही होती है ना, तो जो नेटिव्स होते हैं, जो उस मुल्क के रहने वाले होते हैं, उनको ये खदशा होने लगता है कि अब ये इतने ही ना बढ़ जाए कि वह हमारे ऊपर ही टेक ओवर कर लें, तो फिर क्या होगा हमारा। कहा जाता है इस वजह से, बाज कहते हैं कि ये वजह थी कि फिरौन ने इनको इनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। और एक रिजेंटमेंट होती है ना किसी भी जगह पर, जहाँ पे एक नेटिव्स होते हैं और एक इमिग्रेंट्स होते हैं। अब इमिग्रेंट चाहे अपने रंग की वजह से या अपनी जुबान की वजह से, वो हमेशा एक अलग ही देखे जाते हैं, वो कभी ब्लेंडिंग नहीं हो पाते। अब जिस वक्त ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो वहां के रहने वाले थे उनके दिलों में इनके लिए आ गई कि ये देखो हमारे यहाँ पे इतने पल बढ़ रहे हैं और इतने ज्यादा होते जा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनको वो जॉब्स और वो अपॉर्चुनिटीज जो दूसरों के पास थी वो देनी खत्म कर दी गई, और कोई भी व्हाइट कॉलर जॉब इनको नहीं मिलती थी। नतीजा क्या हुआ कि ये बस मजदूरियां करने और मुशक्कत करने पर मजबूर हो गए, इनको बस नौकर बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया, इनको इतना यानी दबाया गया। जैसे कि आप इस वक्त दुनिया के हालात देखें तो ये बात समझनी कोई भी मुश्किल नहीं। आप रोहिंग्यन मुस्लिम्स को देखें, कब से रह रहे थे ना वहां पे, अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, ये तो यहाँ के हैं ही नहीं है, ये तो यहाँ के ही, यहाँ को बिलोंग थोड़ी करते, और क्या उनका हाल किया और निकाल बाहर किया। आप इस वक्त देखें चाइना में यूगर्स के साथ क्या किया जा रहा है, तो ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है। एक मैंने किसी ने भेजी हुई थी एक वीडियो, उसमें कुछ सवाल जवाब हो रहे थे, तो एक बंदे ने कहा कि ये जो मुसलमान है ये ऑस्ट्रेलिया में इतने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, तो मुझे तो डर है कि इनकी पॉपुलेशन, क्योंकि इनके बच्चे भी बहुत होते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन इतनी ना बढ़ जाए कि ये तो यहाँ पे शरीयत नाफिज कर देंगे। तो यानी आप देखते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनको एक खदशा सा होने लगता है कि पता नहीं अब ये क्या करें। तो सेम वे इजिप्ट में ये हुआ था। और पढ़ते हैं आप, हम इस तरफ आते हैं आयात की तरफ, आप आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ आई कि क्या सिनेरियो था। और जो भी कहीं किसी मुल्क में इमिग्रेंट्स हैं उनको ये बात अच्छी तरह समझ आती होगी कि क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप कहीं इमिग्रेंट होते हैं किसी मुल्क में। देखते हैं आयत नंबर 49 से, अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, याद करो जब हमने तुमको निजात दी आले फिरौन से। अब ये किसको कहा जा रहा है, याद करो हमने तुमको निजात दी, हमें तो नहीं निजात दी गई, किसको ये एड्रेस किसको किया जा रहा है कुरान में? यहूदे मदीना को। मदीना में ये आयात उतर रही हैं, जस्ट उस जमाने में जाके देखें कि अभी ये आयात उतर रही हैं और उनको सुनाई जा रही हैं कि देखो हमने तुमको निजात दी, तो उनको तो नहीं निजात दी थी आले फिरौन से। फिरौन तो बहुत जमानों पहले गुजर चुका था, 2000 साल तकरीबन गुजर चुके थे, 2000 साल से भी ज्यादा का जमाना। तो कहा जाना नजैना कुम, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जो एहसान हमारे आबाओ अजदाद पे होता है वो एक्चुअली हमारे ऊपर ही एहसान होता है। आपने कभी दुआएं पढ़ी हैं, कुरानी दुआएं किसी किताब में? उनमें एक दुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी है, रब्बी औज़ेनी अन अशकुरा नियमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, अल्लाह मैं मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं उस नेमत का जो तूने मुझ पे किया और मेरे वालदेन पे किया। आपके वालदेन, आपके आबाओ अजदाद पर अल्लाह की जो नेमतें होती हैं उसका समर कौन उठाता है, उसका फल कौन खाता है? मसलन किसी के वालदेन हैं, अगर वो बड़े मालदार हैं या उसके आबाओ अजदाद बड़े मालदार थे, तो उसका फल किसने उठा, नतीजा किसको मिला, फायदा किसको हुआ, उसकी औलाद को। एक वालदेन थे बहुत इल्म वाले थे, बहुत दीनदार थे, उन्होंने अपनी औलाद को दीन की तरफ लगाया, तो आबाओ अजदाद पे जो अल्लाह के एहसानात होते हैं उनका फल डायरेक्ट औलाद और नस्लों तक पहुंचता है। तो इसलिए उनको कहा गया आज तुम इसीलिए सरवाइव कर रहे हो, आज तुम इसीलिए हो कि तुम ए अल्लाह ने निजात दी थी, यानी तुम्हारे आबाओ अजदाद को, तो तुम्हारे ऊपर ही एहसान है ना। तो नजैनाकुम, तुम्हें दी निजात, याद करो कि किस तरह तुम्हें निजात दी थी आले फिराउन से। आले फिराउन कौन है, मैंने आपको बताया फिराउन की जितनी भी कौम, उसके लश्करी फौजी, उसके वजीर मुशीर, उसकी फैमिली, उसके वो सब आल में है, जो उसके अकीदतमंद, उसके जितने उसके साथ उसके साथी थे, ठीक है। तो यानी वो किबतियों से, वो किबती कौम कहलाती थी, ये बनी इसराइल है, और वो कौन है, किबती, काफ के साथ, बै तो, ठीक है। यसूमूनकुम, वो तकलीफ देते थे तुमको, क्या करते थे, सू अल अजाब, बुरा अजाब देते थे, क्या करते थे बुरा अजाब। मैंने आपको जैसे बताया कि कोई अपॉर्चुनिटी इनके पास नहीं थी, सारी वो इनको लेबर वर्क इनसे कराते थे, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कराते थे, ज्यादा पे नहीं करते थे, इनकी हालत बहुत बुरी थी, ये स्लेव्स थे वहां पे, स्लेव बना लिया हुआ था इनको। अच्छा, अब आप बताएंगे मुझे कि ये कौन थे लोग, बनी इसराइल कौन थे जिनको स्लेव्स बनाया गया था, गुलाम बनाया गया था, ये कौन थे जिसको हम आज कहते हैं ना, किसी फैमिली को पता चलता है, हमें जेन्युइनली, ऐसे ही नाम नहीं रखा हुआ, जेन्युइनली किसी का पता चलता है कि ये सैयदजादे, तो कितनी रिस्पेक्ट होती है। समझ लें, बनी इसराइल सैयदजादे थे, पैगंबरों की औलाद थे वो, मामूली बात तो नहीं है। यानी हम अपने में से किसी, कोई दावा नहीं कर सकता कि हम पैगंबरों की औलाद में से, अनलेस के कोई जेन्युइन सैयद हो। लेकिन वो क्या थे कि वो पीछे जैसे जाके याकूब अलैहि सलाम, इसहाक अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम, ये इनके आबाओ अजदाद थे, ठीक है। तो ये उन्हीं याकूब अलैहि सलाम के 12 बेटों से ही चल रहे थे ना, और अब इतने ज्यादा हो गए थे कि 6 लाख इनकी पॉपुलेशन थी। अब क्या था कि जब इतनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, एक तो वो उनको बहुत, उनसे ऐसे काम लेते थे जो कि लो ग्रेड वर्क था और जिसमें बहुत मुशक्कत थी, और इनको कुछ ज्यादा नहीं पे करते थे। और फिर दूसरा उसने क्या काम शुरू किया, जैसे आज के दौर के अंदर कंसंट्रेशन कैंप्स कायम कर दिए जाते हैं, वहां पे लोगों को ले जाके बंद कर दिया जाता है, सिर्फ उनके 3 मजहब की वजह से, उनको सताने की वजह से, उनके ऊपर टॉर्चर की वजह से। तो उसके टॉर्चर का क्या तरीका था, उसने कहा इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनके लोग मारना शुरू कर दो। युदब्बिरूना अबनाअकुम, ऐसा होता था कि जो औरत प्रेग्नेंट होती थी उनको पता चल जाता था, उसके ऊपर गार्ड्स मुकर्रर हो जाते थे, वो दाई वगैरह को सबको कह दिया जाता था कि जब बच्चा पैदा होगा उसी वक्त उसको जिबा कर दिया जाता था। अब ना ये जब भी होना, मैंने आपको बताया कि शिद्दत है, दो बातें हैं इसके अंदर, एक क्या बार बार करना वही काम, दूसरा क्या शिद्दत उसके अंदर, यानी जबहा एक आम है, एक जबहा है, यानी उसको बहुत ही बुरे तरीके के साथ करना, तो तकलीफ देके। तो वो इन बेबीज को सोचे कि वो जिबा करते थे, स्लॉटर करते थे। आज हम सोचते हैं ना दुनिया में कितना जुल्म है, कितना जुल्म है, ये ना सोचें कि ये आज पहला दिन है, कि ये कोई पहला दौर आया जिसमें कोई जुल्म हो रहा। तारीख उठा के देखिए, जुल्म की दास्तानें ऐसी ऐसी हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है। एक एक इन्फेंट को इंसान देख के तड़प जाता है, अगर वो, उसको कोई ऐसी तकलीफ हो रही है, उसको कोई मार रहा है या उसको कोई और उठा के फेंक रहा है, तो कितनी तकलीफ होती है देखा नहीं जाता। वो कहां जिबा करना, और एक को नहीं, कहा जाता है बाज रिवायत में आता है 12,000 बच्चे उसने कत्ल किए, और बाज जगह आता है 90,000, 90,000 बेबीज को जिबा करना कोई मामूली बात है। और इससे आप ये भी समझ सकते होंगे कि इन बनी इसराइल की बेचारगी और इनकी लाचारी और इनकी बेबसी का क्या आलम होगा कि इनके साथ ये हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते, बस देख रहे हैं। यानी कोई करने देगा अपने बच्चे को ऐसे? लेकिन सोचिए उस वक्त की अथॉरिटीज के सामने, जो लोकल अथॉरिटीज थी, मसलन कोई पुलिस है, आज के जमाने में इसको पुलिस कहें, उस जमाने में उसकी जो पुलिस थी वो आके इस तरह से ले जाती थी, वो किसी को मिजाल नहीं थी कि कुछ करे। जैसे आज मुसलमान इतने बेबस हैं कि उनके सामने कुछ भी हो जाएगा ना, तो बस तस्वीर बने, तमाशा देखते रहेंगे, और बस उनके सामने होता चला जाएगा। उनकी कोई से नहीं है, उनके कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई कोई देखने वाला नहीं। ये इतनी बेबसी ही थी इसी तरह बनी इसराइल की, ठीक है। वह यस्तहयूना निसाअकुम, अब यहां पे होना तो चाहिए था वह यस्तहयूना बनातकुम, तुम्हारी बेटियों को छोड़ देते थे, लेकिन कहा गया निसाअकुम, निसा एक फुल ग्रोन औरत को कहते हैं, बेटियां होती तो ये कोई जुर्म तो नहीं होना था ना कि बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे, ये तो एक अच्छी बात है कि चलो किसी को तो छोड़ा, लेकिन कहा गया यस्तहयूना निसाअकुम, ये क्यों कहा गया सोचा आपने, ये बेटियां क्यों नहीं आया? देखिए बेटे की उलट में बेटी आनी चाहिए थी ना, उनको जिबा करते थे, बेटियों को छोड़ देते थे, लेकिन आया निसा को, सोचे आप खुद भी सोचा करें। जब किसी की औरत की बात आती है ना, तो आदमी के लिए बड़ी गैरत की बात हो जाती है, यानी औरतों को जिंदा छोड़ते थे ताकि उनको अपनी लौंडियां बनाए, उनसे खिदमतें ले, ठीक है? और सोचें कौन लौंडियां बन रही हैं, कौन लौंडियां बन रही हैं, ये जो पैगंबरों की औलाद है। और उनको कैसे, उनकी वो कोई इज्जत नहीं है उनकी, यानी कुछ भी ना, उनके पास जीने का हक है ना उनकी इज्जतें महफूज है। दो ही चीजें होती है ना, माल तो है ही नहीं उनके पास, कोई उनकी कैसी जॉब्स उनको दी हुई, और जान और इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। तो नस्ल कुशी, और मैंने आपको बताया ना बार बार करता था, यानी इसका मतलब हर एक साल छोड़ के, एक साल छोड़ के इस तरह करता, बार बार उसका ये काम था। और वयस्तहयूना निसा को, अब तुम औरतों को तुम्हारी अब ये भी एक किसी कौम के लिए इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि उसकी औरतों को ले जाया जाए और वो जो मर्जी करें और लौंडियां बनाए उनको। कितनी बड़ी एक कौम के लिए ये कितनी बड़ी एक गैरत की बात होती, लेकिन फिर भी वो बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। और इसी से आपको पता चल रहा होगा कि उनकी हालत कितनी गिर चुकी थी, पस्ती का क्या आलम होगा। सोची कहां से उन्होंने स्टार्ट किया था और कहां तक वो पहुंच गए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैंने आपको बताई थी वो हदीस, कि तुम पर भी वो जमाना वैसा ही सब कुछ गुजरेगा जैसे कि पिछली कौमों पे गुजरा। और आज देखें, औरतें लूट रही हो, बच्चों को मारा जा रहा हो, उनके ऊपर किस किस तरह के टॉर्चर किए जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बन गए हो, लेकिन मुसलमान ही है जो खामोश है, खामोश तमाशाई बनेंगे। वफी दालिकुम बला उम्मीर रब्बिकुम आदीम, इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से, बहुत बड़ी आजमाइश थी। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। क्यों था ये? बनी इसराइल को होश में लाने के लिए। तुम्हें अल्लाह ने किस चीज के लिए चुना हुआ है? तुम पैगंबरों की औलाद हो, तुमने करना क्या था? हाँ, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बुतों को तोड़ने वाले थे, जिन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी तौहीद के लिए, तुम किधर पहुंच गए हो? तुम किसकी औलाद हो? इसहाक अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की? तुम्हारा हाल क्या हो गया? तो इसमें बड़ी आजमाइश थी। और मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि आजमाइश से यहां पे मुराद ये भी है, हो सकती है कि नजैना कुम आजमाइश, निजात देना, जो हमने तुम्हें निजात दी इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। इसमें क्या आजमाइश हो सकती? अच्छी चीजों में आजमाइश होती है? हम कहते नहीं, अच्छी चीजों में तो कोई, वो तो बुरी चीजों में आजमाइश, हम तो टेस्ट समझते ही नहीं ना। नेमत मिलने को तो हम टेस्ट ही नहीं समझते, हालांकि नेमत में भी टेस्ट है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि बला जो होती है वो हसनात में भी होती, सैयाद में भी होती, भलाइयों में भी बुराइयों में भी होती। तो ऐसा नहीं है कि निजात मिलना इसमें कोई आजमाइश नहीं होगी, इसमें भी आजमाइश। आजमाइश क्या होती है? जब इंसान को कोई नेमत मिले, कोई अच्छी चीज मिले, आजमाइश ये होती है कि इंसान अब पता चले कि कितना शुक्र अदा करता है और इसमें कितनी आजजी रहती है, लोगों को हकारत से तो नहीं देखता अब, ये आजमाइश होती है नेमत में। लेकिन इंसान को ना नेमत पा के अक्सर समझ नहीं आती कि ये भी मेरी आजमाइश, ये मेरा टेस्ट है। ठीक, अच्छा, अब देखें कितनी बड़ा अल्लाह ताला का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको निजात दिया। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें, किसी भी इस वक्त के दुनिया के ऐसे एरिया को जहां पे मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा हो, कितनी रूह कांपती है। अच्छा, उसको सोचेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा, पैलेस्टाइन को सोच लें, कश्मीर को सोच लें, रोहिंग्या को सोच लें, चाइना के मुसलमान, कहीं को भी आप सोचें, और फिर सोचें कि बनी इसराइल उस किस्म की चीजों से गुजर रहे थे। और साल हा साल गुजरते ही जा रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने निजात दी, और बला भी किसकी तरफ से थी, आजमाइश भी ये किसकी तरफ से थी, मेरे रब्बी को, तुम्हारे रब की तरफ से। टेस्ट क्या, किस लिए लिया जाता है? अरे टेस्ट हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन टेस्ट किस लिए लिया जाता है? इंसान को आजमाने के लिए ना, कितना इसके अंदर दम खम, उसको प्रमोट करने के लिए आगे, ठीक है? तो यही टेस्ट का मकसद होता है। टेस्ट कभी इसलिए नहीं लिया जाता कि लोग फेल हो जाएं और बड़ा मजा आ रहा है, लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए लिया जाता है, कुछ किसी चीज के लिए तैयार करने के लिए लिया जाता है। अब मेडिकल में एक बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है कि वो डॉक्टर बन जाए, ठीक है ना? तो ये इस तरह से समझे आप कि इसलिए उनका टेस्ट, उनको टेस्ट में डाला अल्लाह ताला ने, और ये लेकिन बहुत बड़ा टेस्ट था। और कौमों पर ऐसे टेस्ट आते रहेंगे, बात ये होती है कि उस टेस्ट से सीखते क्या है। वَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए समंदर को, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, फिर निजात दी हमने तुमको, وَأَغْرَقْنَا, और गर्क कर दिया आल फिरऊन, आले फिरऊन को, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, और तुम देख रहे थे अपनी आंखों से। अब क्या हुआ, अब ये जो सारा मैंने आपको बताया कि ऐसे उनके साथ जुल्म सितम हो रहा था, अब आगे आप बहुत डिटेल में इस स्टोरी को बार बार कुरान पाक में पढ़ते रहेंगे कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस किया, फिरौन की तरफ भेजा, उन्होंने आके फिरौन से क्या कहा, दो चीजों की डिमांड की थी मूसा अलैहिस्सलाम ने। नंबर वन, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज, सॉरी इसको नंबर टू कह लें, सबसे पहले तो उन्होंने तौहीद का उसको पैगाम दिया था कि एक अल्लाह पर ईमान ले, और नंबर टू क्या, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, लेके वापस जाना चाहते थे बनी इसराइल को, अल्लाह की तरफ से इनको हुक्म था कि ये जाके कहें, और बनी इसराइल को वापस कहाँ लेकर जाएं, इनके कंट्री जहां से वो आए थे, बैतुल मकदस यरूशलम, वापस ले जाएं उनको ना। आज भी यहूदी उसको अपना समझते हैं ना कि वो हमारा असल ओरिजन है, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि जब फिरौन नहीं माना, और बहुत बहुत साल उसको समझाने के बावजूद वो नहीं माना, तो आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ से अब ये मूसा अलैहिस्सलाम को वही आई कि ए मूसा, आप रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल चले, ठीक? अब जो बनी इसराइल को कम तो नहीं थे, 6 लाख लोग थे, आसान तो नहीं था 6 लाख लोगों को लेकर निकलना। अब यहां से कहीं जा रहे हो और दो चार गाड़ियां भी आपके साथ हों, तो कोई कहीं लॉस्ट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो आसान नहीं था। तो एनी हाउ मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, जब निकले तो हाँ, आप क्या सोचते हैं कि उनको नहीं पता चला होगा कि इतने लोग निकल के जा रहे हैं, तो उनको नहीं समझ आई होगी? उनको समझ आई, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि उनके घर के हर जो बड़ा बेटा था वो फौत हो गया, हर एक के घर कब्तियों के, तो अब वो तो उसके अंदर लग गए, और इतने में ये लोग निकल गए। लेकिन इतनी बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग निकलते हैं तो वो तो स्लो होगा ना, वो तो काफला, जब तक उनको होश आया तो उन्होंने कहा फिरौन ने कि अब इनको पकड़ो और एक एक को कत्ल कर दो, खत्म कर दो उनको, और वो खुद निकल पड़ा अपने साथियों को, अपनी फौज को लेकर सारी को निकल पड़ा। अब वो तो घोड़ों पे हैं और वो तो ट्रेंड है, और इनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब सारे तरह के लोग हैं, तो वो तो एक काफिला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब वो कितनी दूर जा सकते थे? अल्लाह ताला ने देखें क्या किया कि ये भी सारी जो मुजजात है ना अल्लाह ताला के, अल्लाह ने जो दिखाए हैं दुनिया में, ये भी इंसान की आंखें खोलने के लिए काफी हैं, और इस बातों को सब मानते हैं, वो ज्यूज भी मानते हैं। इसके ऊपर पूरी इन्होंने एक मूवी भी बनाई हुई है, जिसपे उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से वो लोग निकले और कैसे वो जा रहे हैं, चल रहे हैं, और कितनी मुश्किलों से, और पीछे वो तो उसके फौज है पूरी, वो तो धड़ाधड़ घोड़ों पे आ रही है। अब हुआ ये कि ऐसी जगह पर पहुंच गए बनी इसराइल जहां पर आगे समंदर था, और पीछे देखा तो वहां से वो आ रहे हैं फिरौन के पूरे लश्कर। कितनी बड़ी एक मुश्किल की बात थी इनके लिए कि अब तो हम फंस गए, अब हमारा क्या बनेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। आप देखें, वो जिनसे बचने के लिए जा रहे थे वो तो अब सर पे खड़े हो गए, और अब तो वो इतना मारेंगे क्योंकि अब तो वो गुस्से में है कि तुम्हारी मिजाल कैसे हुई कि यहां से तुम निकले हो। तो उस वक्त अब मूसा अलैहि सलाम खड़े हुए हैं सामने समंदर, पीछे वो जिसको कहते हैं बिटवीन द डेवल एंड द डेड सी। अब तो मूसा अलैहि सलाम खड़े हुए हैं, तो लोगों ने उनको कहा इन्ना लमुदरकून, कुरान में आता है। तो वो कहने लगे हम तो पकड़े गए। कईयों ने कहा मूसा हमें यहाँ पे किधर ले आए हो, हमें मरवा दिया तुमने, ये क्या किया। मूसा अलैहि सलाम खड़े हैं और क्या फरमा रहे हैं, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मुझे अनकरीब रास्ता दिखाएगा, वो जल्दी मुझे रास्ता दिखाएगा, सयहदीनी, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, मेरा रब मेरे साथ है। और देखते हैं मोमिन का ईमान कैसा होता है कि आजमाइश जितनी बड़ी होती है, मुसीबत जितनी ही ज्यादा सख्त होती है, मुश्किलात जितनी ज्यादा आती हैं, उसका अल्लाह के ऊपर भरोसा भी उतना ही बढ़ जाता है। अक्सर हमारे साथ उलट होता है ना, मुश्किल ज्यादा होती जाती तो हमारा ईमान क्या होता है, बजाय बढ़ने के वो तो घटना शुरू हो जाता है, डगमगाने लगता है। बल्कि बहुत से लोग तो मायूस हो जाते हैं जैसे जैसे मुश्किल बढ़ती है, मसला बढ़ता है, कहते हैं हाय ये तो मसला खत्म ही नहीं हो रहा, बस अब कभी नहीं खत्म होना, बस अब तो हमारा कभी नहीं हालात सही होने, बस अब तो कुछ नहीं होगा, बस अब तो हमने दुआएं भी मांग के देख ली, बस अब तो, यानी बजाय ईमान बढ़ने के जरूर अल्लाह करेगा मेरे लिए, जरूर अल्लाह अल्लाह मेरे साथ है, ये नहीं होता। उल्टा अल्लाह को ही भूल जाते हैं, चलो छोड़ो अब अल्लाह से तो बात नहीं बनी, अब चलो आ फलां मिजार के चलते हैं, चलो आ फलाने बाबे छा के चलते हैं, फलो वो फलां है, वो जो आमिल है वो कर देता है कुछ जादू, कुछ वो 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा, चलो उनकी तरफ चलते हैं। ये वाली बात कितनी जबरदस्त है, कल्ला जो तुम बात कह रहे हो ना, हरगिज ऐसा नहीं है, इन्नमा या रब्बी सयहदीनी। जब इंसान मुश्किल में हो तो मूसा अलैहि सलाम के इन अल्फाज को याद कर ले कि इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, ये भरोसा है, फुल फुल ऑफ ट्रस्ट है ये अल्फाज, इनमें उनका जो अल्लाह के ऊपर एक तवक्कल है ना वो झलक रहा है, उनको फिक्र नहीं है, वो इस तरह नहीं घबरा रहे जैसे लोग घबरा रहे हैं अब क्या होगा, अब तो बस गए हम, अब वो अल्लाह ताला कहाँ गया, भूल गए कि एक अल्लाह की जात भी तो है, नहीं अब तो हम बस पकड़ेगा है, अब हमारा कुछ नहीं होगा, ये वो मीडियोकर लोग थे ना, और आज हम भी वैसे ही हैं, बिलीव मी ऐसे ही हैं, बस हम मारे गए, हम लूटे गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब इंसान अल्लाह ताला को के ऊपर भरोसा नहीं रखता हो, या अल्लाह ताला को नहीं समझता कि वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, तो तब उसकी यही बातें होती हैं कि अब कुछ नहीं सही हो सकता। उस वक्त जैसे मूसा अलैहि सलाम का भरोसा था, इस तरह हमें हर अपनी मुश्किल के अंदर भरोसा करना है अल्लाह पर, और अल्लाह ताला हमें दे ऐसे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने वही की मूसा अलैहि सलाम पर, ए मूसा अपना आसा मारो, आसा आसा से भी कभी कुछ होता है, आसा मारो, आसा तो एक लाठी है, लेकिन अल्लाह ताला का क्या हुक्म हुआ, अपना आसा मारो। मूसा अलैहि सलाम ने ये नहीं पूछा अल्लाह आसा से क्या होगा, पैनिक में इस वक्त हमारे पीछे वो है, हम आगे जाते हैं तब मरते हैं, समुंदर में डूब जाएंगे, वो खड़े रहते हैं तो वो आके हमारी जान ले लेंगे, आसा से क्या होना है, नहीं उन्होंने ये सवाल नहीं किया, समझे ना आप, इससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, हमें तो फौरन पहले होता है, इससे क्या ना। उन्होंने आसा मारा और क्या हुआ, वो समुंदर ऐसे फटा कि दोनों तरफ जैसे पानी के पहाड़ खड़े हो गए और बीच में रास्ता बन गया। अल्लाह ने हवाएं चला दी, वो रास्ता भी खुश्क हो गया ताकि चल सके, वरना तो आप ऐसी जमीन के ऊपर चल ही नहीं सकते, पैर ही अंदर धंस जाए। और पानी ऐसे खड़ा हुआ दोनों साइडों पे जैसे ऊंची ऊंची चट्टानी है, ऐसा कभी इस जमीन ने ना पहले कभी देखा ना कभी देखेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। और देखें अब आप क्या कहते हैं कि ऐसा से ऐसा हुआ, तो जाएं फिर हम भी ऐसे ही मारते हैं, तो जिस आप एक छोड़ के लाखों मार ले तो कोई समुंदर फटेगा नहीं। फिर वो क्या हुआ, इसलिए कि जब अल्लाह ने करना हो तो फिर वो आसा को यूज करके या किसी भी चीज को सबक बना के कोई भी काम कर सकता है, वो एक जर्रे से भी काम ले सकता है, वो एक लाठी से भी काम, कुछ किसी चीज को भी, क्योंकि कुदरत तो अल्लाह की है ना, आसा में थोड़ी ताकत है, आसा में ताकत नहीं है, उस कैन उस लाठी के अंदर ताकत थोड़ी ही है, अल्लाह की कुदरत से होना होता है। तो भरोसा आसा पे नहीं, भरोसा सबब पे नहीं, भरोसा अल्लाह पर। इससे हमें क्या सबक मिला? सबक ये मिला, नंबर वन, कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आसा मारो, तो आसा मारने के पहले ही अल्लाह ताला कह देते मूसा तुम दुआ करो अल्लाह से, या दुआ की भी जरूरत नहीं, अल्लाह वैसे ही फाड़ देता। इस कहने में क्या हिकमत थी? हमें सिखाना था कि असबाब इख्तियार करो, अल्लाह मदद करेगा, लेकिन ये याद रखना कि जो सबब है वो कोई कुदरत नहीं रखता, करना अल्लाह नहीं है। आप इलाज कराते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर ये मसीहा है, अस्तग़फिरुल्लाह। कोई लोगों ने तो यहां तक यानी कह दिया डॉक्टर जमीन पे अल्लाह का अवतार है, वो भाई डॉक्टर के हाथ में नहीं है, आप जाओ इलाज करो, लेकिन किसने करना, किसने शिफा किसने देनी, अल्लाह ने। आप कोई भी अपने काम के लिए हाथ पैर मारो, दौड़ भाग करो, लेकिन उस हाथ पैर मारने को ये ना सोचो कि मैं फलां के पास गया हूं अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, नहीं, वो फलां नहीं कर सकता, करना अल्लाह नहीं। और यही भरोसा तो नहीं आता हमें, या तो हम बिल्कुल ही हाथ पैर तोड़ के बैठ जाते हैं घर में, बस अल्लाह ने करना है हमने क्या करना है, उस उसकी जब होगी मर्जी तो कर देगा, मैंने ही कुछ नहीं करना, या तो ये हमारी अप्रोच हो जाती। दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाए तो सारा भरोसा असबाब पे है, बजी फलाने को कहलवा दिया, बजी फलां कॉन्टेक्ट हमने यूज किए हैं, बजी अब तो काम हो ही जाएगा, अब तो मैंने फलाने वजीर के साथ बात कर ली, अब तो फलां डॉक्टर ये केस ले रहा है, अब फलां वकील के पास मैं चला गया, तो ये कर सकते हैं क्या? तो फिर हमारा वो उसको भरोसा उनके ऊपर हो जाता। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों पे ही नहीं जाना हमें, ठीक है? सबब इख्तियार करना है, लेकिन ये सोचना है हाँ अल्लाह तेरा हुक्म है सबब इख्तियार करो, मैंने कर लिया, लेकिन अल्लाह करना तू नहीं, अल्लाह मैं दवा खा रही हूं लेकिन अल्लाह इसमें शिफा तू नहीं डालनी। अब वही दवाई आप खाते हैं, वही दवाई कोई और खाता है, एक को शिफा मिल जाती एक को नहीं मिलती, तो दवाई का तो कमाल नहीं है इसका मतलब, वरना तो हर एक को मिल जाती, तो वो तो शिफा डालने वाले की बात है ना, वो चाहे इतनी छोटी सी गोली, इस गोली को असा समझ ले, इस गोली के अंदर वो चाहे तो शिफा डाल दे चाहे तो ना डाले। मूसा अलैहिस्सलाम के असा से समुंदर फट गए, हमारे लाखों असाओं से कुछ नहीं होता, तो वो अल्लाह ने डालना है इसके अंदर कि ये कुदरत अल्लाह की है। हजरत मरियम जो थी, जब उनको पेन्स आ रही थी, डिलीवरी का टाइम था, तो उनसे क्या कहा गया, इस दरख्त को हिलाओ, खजूर के दरख्त, हम मुझे बताएं एक औरत पेन में है वो कितनी जोर से हिला देगी, वैसे ही वो लड़की थी यहाँ ऊपर से वो पेन में कितनी जोर से हिला लेंगे बताएं, लेकिन उनको कहा गया तुम हिलाओ और खजूरें टपकी, तो उनसे क्यों कराया गया कि तुम्हें पता चले कि सबब इख्तियार करो, ऊंट बांधो फिर अल्लाह पे भरोसा करो, समझ आएगी? अच्छा। अब ये कितनी बड़ी नेमत एक और याद दिलाई। अभी आप देखेंगे सारी नेमतें याद दिलाई जा रही हैं इनको कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितने एहसानात किए। सोचते हो तुम्हें कैसे निजात दी आले फिरौन से, वो तो तुम्हारे साथ इतना बुरा करता था, तुम्हें कैसे, फिर समुंदर आगे था उसको फाड़ दिया, तुम्हें निजात दे दी, और फिर ये भी सिर्फ निजात नहीं दी, एक और भी नेमत याद दिलाई, वह अगरकना आले फिरौन को गर्क कर दिया, यानी तुम्हारी आंखों के सामने उनको गर्क किया, ताकि नंबर वन ये कि पता चल जाए कि हाँ भाई अब हमारा कोई दुश्मन नहीं, वरना तो धड़का ही लगा रहेगा, क्या पता कोई आगे खबर भी दे दे कि वो तो सारे मर गए हैं, अब नहीं क्या पता नहीं ऐसा हुआ हो। देखिए जब इंसान के दिल के अंदर किसी का खौफ होता है तो कोई जाके चाहे आके बता भी देना कि नहीं अब नहीं उन्होंने आना, फिर भी धड़का लगा रहे थे, पता नहीं क्या पता आ ही ना जाए, क्योंकि जाहिर है इनका बहुत रोब था उनके ऊपर, ये उनका टॉर्चर सह चुके थे, उनको पता था वो कितने जालिम है। और दूसरा अल्लाह ने इनके सीने ठंडे किए, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को जिबा करते थे ना, देखो अल्लाह ने इनसे कैसा इंतकाम लिया। अब बनी इसराइल में अपनी तो कोई ताकत नहीं थी कि इनसे लड़ते, ना उनके पास कोई ऐसी चीजें थी कि इनका मुकाबला करते, लेकिन अल्लाह ने उनकी जगह पर देखो कैसे अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया, ये इनको ना लड़ना पड़ा ना इनको कोई मुकाबला करना पड़ा, अल्लाह ने बल्कि उसको गर्क करके दिखाया इनको। और क्या पता चलता है, समझ क्या आती है, जब हम भी कभी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं, पांच दफा जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं कि वाकई जैसे बनी इसराइल के ऊपर आया कि पीछे फिरौन और आगे समंदर, ना समझ आती है किधर को जाएं, हर तरफ एक मायूसी सी घेरने लगती है, हर तरफ से अंधेरा सा लगता है कि कहीं रास्ता नहीं है। उस वक्त सोचा करें कि अल्लाह है जो रास्ता निकालने वाला है, वो निकाल सकता है रास्ता, जबकि मुझे कोई रास्ता नजर ना आ रहा, वाकई नहीं नजर आ रहा था ना, क्या रास्ता नजर आ रहा था बनी इसराइल को, किधर भागते उस वक्त मुझे बताएं, कोई जगह थी, और इतनी बड़ी आर्मी पीछे आ रही, और सोचे खौफ का आलम क्या होगा, और उस वक्त अल्लाह ने रास्ता कैसे निकाला। इसी तरह अल्लाह जिंदगियों में जब मुसीबतों के तूफान होते हैं, ऐसे ऐसे मसाइब के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, अल्लाह उनमें रास्ते निकालता है, बशर्ते के इंसान अल्लाह पे भरोसा तो करके देखे, ये कह के को तो देखे इन्नमा या रब्बी सजा दी, मेरे साथ मेरा रब है वो मुझे जरूर राह दिखाएगा, ये भरोसा करके तो देखो। हम तो 4 दिन दुआएं करते हैं, 5वें दिन कहने लगते सुनी नहीं जाती मेरी, पता नहीं कब सुनी जाएगी, हाय हम तो इतने दिनों से मांग रहे हैं हमारा तो नहीं काम हुआ। अब ये एक मूवी की तरह आपके जहन में सारी ये चलनी चाहिए, ये सारी आयात की आप अपने सामने विजुअलाइज कर रहे हो कि क्या हो रहा होगा, और सिर्फ इनको आयतों के तौर में ना पढ़े, एक जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट, जो बनी इसराइल का पूरा वो क्या उसको कहेंगे, पूरी कौम चल रही थी, वो जो पूरा उनका नेशन था, समझें कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैम, फिर क्या लग रहा होगा मुझे। और आज अगर कोई नाम ले कि बड़ी बड़ी ऐसी जगहों का या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का, या ऐसे जो बहुत ही सख्त जालिम और वो हैं जो कि लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर उनके साथ क्या क्या टॉर्चर करते हैं, उनकी जगह पे आप आले फिरौन को रख के देखें, तो फिर इनके लिए कितनी बड़ी रिलीफ होगी कि ये गर्क हो गए सारे और अब इनमें से कोई नहीं बचा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लोग आ गए एक मैदान में, मैदाने तीह जिसको कहते हैं, वहां पर फिर अब इनको शाम की तरफ जाना, शाम ये सारा इलाका कहलाता था जिसमें पैलेस्टाइन भी है, अब का शाम भी है, सब ये जगह सारी शाम ही कहलाती थी। तो अब कहा जाता है कि इन लोगों ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अब आजाद हो गए, अब हमें कोई शरीयत मिले, कोई लॉज मिले, हमने कैसे जिंदगी गुजारनी। तो मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के और तूर पे गए, और तूर पे गए और वहां उन्होंने के अल्लाह ताला कोई शरीयत दे, उसका जिक्र आ रहा है, वह इज वादना मूसा 40 लैलतन, और जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहले 30 दिनों के लिए बुलाया था। और रातें क्या मतलब है, रात और दिन, क्योंकि रात पहले आती है, रात पहले आती है। जैसे अब हम कहें फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट ये नहीं होगी जो बिटवीन फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे नाइट किसको कहेंगे, जो बिटवीन थर्सडे एंड फ्राइडे है, वो फ्राइडे नाइट है। तो रात पहले आती फिर दिन है, ठीक है। तो 30 रातों का वादा था, फिर अल्लाह ने और 10 बढ़ा दी। और इतने दिन मूसा अलैहिस्सलाम रोजे से रहे, सोचे रोजे से रहे। उनको भी जब शरीयत मिली है, किताब मिली है, तो वो रोजे से थे। और हमें भी रमजान में अल्लाह ताला ने हमारी किताब दी है। तो वो अरबाइना लैला, वहां पे 40 दिन। अब ये पीछे कौम वेट कर रही है कि आई नहीं आई नहीं। अब उनके लिए वेट बड़ा मुश्किल हो गया। और वहां पे उनमें एक आदमी था, जादूगर था, सामरी के नाम से। उसने कहा मूसा तो भूल गए हैं, असल में खुदा तो उनका ये है। उसने एक बछड़ा बनाया, काफ, सोने का बनाया, और किससे, उनके जेवरों से ही लेके, और उसके अंदर वो मट्टी डाली जो उसने उठा ली थी जिस वक्त के बनी इसराइल समंदर से गुजर रहे थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पे वहां से गुजरे, और जो उनके घोड़े की टापे हैं वहां से मिट्टी उसने उठाई थी। उसको कैसे पता चला, बाज रिवायात में आता है कि वो वहां पे ग्रीनरी हो जा रही थी जहां जहां पे घोड़ा अपने पैर रखता था। एनी हाउ, ये इसराइली रिवायात है, बाहर कैफ उसने उठाई या नहीं उठाई, लेकिन कुछ रिवायत में यह है कि उसने उठाई थी और वो उसने डाली, तो वो उसमें से भी कुछ आवाज सी निकलने शुरू हो गई थी बछड़े में से। उसने कहा लोगो आओ इसको पूजा, पूजो इसको, ये है असल में तुम्हारा खुदा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम मतखज तुम अजला मिन बाद ही, तो तुमने बना लिया बछड़े को इसके बाद। क्या बना लिया, आगे देखें, वह अंतुम जालिमून, और तुम जालिम हो। तो बात तो कंप्लीट नहीं हुई, क्या बना लिया। माँ बना लिया, बाप बना लिया, बहन भाई बना लिया, क्या बना लिया। ये बात क्यों नहीं बताई गई कि इलाह बना लिया, इसलिए कि एक किसी भी ईमान वाले के लिए ये बड़ी गैरत की एक बात है कि वो अल्लाह को छोड़कर और किसको माबूद बना ले, एक ऐसी चीज को जो कि सोने की बनी हुई है, एक जानवर है, उसके बुत को अपना इलाह बना के बैठ जाए। तो ये बात भी नहीं कही गई तुम मतखज तुम इजला मिम बाद ही, क्या इसके बाद तुमने बछड़े को बना लिया, क्या इलाह का लफ्ज ही नहीं है यहाँ पे, माबूद का लफ्ज ही नहीं है यहाँ पे, बताया नहीं गया कि क्या बना लिया उसको। इसलिए कि वो इस काबिल नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। तो ये भी इतनी वर्थलेस चीज है कि इसको मेंशन भी नहीं किया गया कि उसको ये इलाह बनने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो और वह अंतुम जालिमून, और तुम जालिम थे। कैसे वो जालिम थे, उन्होंने क्या जुल्म किया था। अच्छा, जो जो ही आपके जहन में जुल्म का लफ्ज आता है तो क्या होता है कि किसी ने जुल्म किया, तो हमारे जहन में आता है कि जैसे कोई किसी को कोड़े मार रहा है, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी को किसी ने किसी को स्ट्रेंगल कर दिया है, किसी को जंजीरों में बांध के रखा हुआ है, तो ये बड़ा जुल्म हो गया भाई। हालांकि आपको पता है सबसे बड़ा जुल्म क्या, शिर्क। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि जुल्म क्या होता है, हकदार से उसका हक छीन लेना। अल्लाह का हक है कि उसकी इबादत की जाए, और लेके उसका हक, वो जो रब्बुल आलमीन है, तो किसको दे दिया, बछड़े को, उसको पूजना शुरू कर दिया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो सोचे उनका क्या हाल हुआ होगा कि मैं तुम्हारे लिए शरीयत लेने गया हूं, तुम क्या कर रहे हो पीछे, तुम ईमान से ही फिर गए।